नमस्कार भारत, आज है 30 अगस्त दिन बुधवार और मैं हूं कुलदीप मिश्र। महाबारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, आज भी हाई टाइड का अनुमान, बार बार क्यों झेलती है मुंबई?
कि चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो जो भी अथॉरिटी हो जिसको हम इस शहर को संभालने का जिम्मा दे रहा हो, वो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी से काम करे, थोड़े पॉलिटिकल विल से काम करे।
बिहार में बाढ़ से 514 लोगों की मौत, पर सरकार को 10 में से 9 नंबर दे रहे हैं प्रदेश के मंत्री।
जैसे ट्रेडिशनल बाढ़ आता था उस तरह से आता तो फिर तैयारी तो उसके लिए सफिशियंट थी। जो इस सरकार वर्तमान नीतीश कुमार जी की सरकार है, 10 में से तो 9 जरूर दिया जाता।
छत्तीसगढ़ के शीर्ष अधिकारियों में कई हैं सिर्फ 12वीं पास। होगी अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। मुंबई में भारी बारिश और पानी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के कारण मुंबई की बस व्यवस्था और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और पानी के कारण कई लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने राज्य की आपदा प्रबंधन टीम और मुंबई महानगर पालिका को भी अलर्ट पर रखा है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के कुछ राज्य भी बाढ़ और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। तूफान हार्वे के कारण आई बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास पहुंचे। देश के चौथे सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। अब तक बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है और 3,000 से अधिक घरों में पानी भर गया है। धीमी गति से चलने वाला तूफान हार्वे का यह चौथा दिन है और इसके कम होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ह्यूस्टन के 2 जलाशय पहले ही पानी से लबालब भरे हैं और अधिकारियों का कहना है कि इस कारण बांध पर और शहर के जल निकासी व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है। ह्यूस्टन में रहने वाली जेसिका डटसन, जिन्हें बचाव कर्मियों ने उनके घर से बचाया, वो कहती हैं, यहाँ काफी पानी भरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। मुझे अपना लाइफ जैकेट पहनना ही पड़ा, लेकिन एक बार आप वहाँ जाते हैं तो आपको दिखता है सिर्फ कचरा, पानी। वहाँ लोगों को मदद चाहिए। मुझे नहीं पता कि लोग अपना घर छोड़ के बाहर क्यों नहीं आना चाहते। मैं सभी से कहूंगी कि वे बाहर आए। जब हम पहले वहाँ गए तो पानी सिर्फ कमर तक था, लेकिन फिर दूसरी बार गए तो पानी गले तक पहुँच चुका था। ये थी ह्यूस्टन में रहने वाली जेसिका डेटसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया की ओर से जापानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से होकर मिसाइल छोड़ने के ताज़ा मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चल रही है। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि मिसाइल का परीक्षण उस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती देने के समान है। उन्होंने उत्तर कोरिया से अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने की अपील की। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निकी हेली ने कहा कि अब कोई गंभीर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेबनन में जानवरों को बचाने की दिशा में अपना लेबनन ने जानवरों को बचाने की दिशा में अपना पहला कानून लागू कर दिया है। इसी महीने लेबनन की संसद ने इस कानून को पारित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति मिशेल आउन ने हस्ताक्षर कर इसे लागू कर दिया। इस कानून में चिड़ियाघरों में अपने घरों में पालतू जानवर रखने और अन्य जगहों पर जानवरों को रखने के बारे में नियम बनाए गए हैं। इस कानून के तहत वन्य जंतुओं और लुप्तप्राय जानवरों को रखना गैरकानूनी बताया गया है। एनिमल्स लेबनन के वकील राणा साघे का कहना है, हमें आज यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने जानवरों की सुरक्षा करने के लिए पहला मजबूत कदम उठा लिया है। जब हमने काम करना शुरू किया था, जब हम जानवरों के प्रति होने वाले अत्याचार और हमले देखते थे, तो हमें लगता था हमारे पास मजबूत कानून नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। किसी को सजा देने के लिए, रोकने के लिए या इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ये थी एनिमल्स लेबनन की वकील राणा साघे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन का कहना है कि इक्वाडोर में हिरासत में लिए गए अपने जहाज के मामले की वो जांच कर रहा है। इस जहाज पर गैलापागोस के संरक्षित समंदर में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप लगाए गए हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जो दफ्तर में थे वो दफ्तर में रह गए, जो रास्ते में थे उन्हें गुरुद्वारों और अजनबियों के घरों में पनाह लेनी पड़ी। मुंबई मंगलवार को भारी बारिश और उसके बाद ज़बरदस्त जलभराव से जूझता रहा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें लगभग पूरी तरह ठप हो गईं। बीते 20 सालों में अगस्त के महीने में यह मुंबई में एक दिन में हुई सबसे भारी बारिश थी। हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे, जिन्हें स्कूल से बच्चों को लाना था उन्हें मजबूरी में हाथों में छाते लेकर कमर तक के पानी में उतरना पड़ा। मुंबई से सुप्रिया सोगले की रिपोर्ट।
कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के जनजीवन में काफी दिक्कतें पैदा कर दी थी। दोपहर से लगातार बारिश से मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो गया और कई इलाके सड़क और रेल मार्ग से कट गए। नेहा जैन अंधेरी से चरनी रोड का सफर 45 मिनट में किया करती थी। कल उन्हें घर पहुंचने में करीबन 5 घंटे लग गए,
11:30 से लेके 6:45 बजे तक का। ये सिर्फ ट्रेन का सफर रहा है मेरा जाकर आने में। आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस।
वही संध्या लखनपाल को मुंबई से दिल्ली की उड़ान पकड़नी थी लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाई।
अंधेरी वेस्ट से एयरपोर्ट मेरे घर से कुछ 20 मिनट दूर और मुझे 2.5 घंटे लग गए पहुंचने में। फिर दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे जाते जाते। एक इंसान ने मुझसे भी पूछा किस तरफ जा रहे हैं, तो मैंने उसे कैब में बिठा लिया था क्योंकि ऑटोज नहीं चल रहे हैं, टैक्सीज नहीं है। मुझे भी कैब बहुत मुश्किल से मिली।
कल भारी बारिश और 3.5 मीटर ऊंची लहरों की वजह से जल भराव हो गया। यातायात ठप होने के कारण बारिश में फंसे लोगों ने अपने दफ्तरों, गुरुद्वारों और अनजान मुंबईकरों के घरों में पनाह ली। दयानंद सरोज भी कल रात अपने घर नहीं पहुंच पाए।
मतलब जिस हिसाब से बारिश हो रही थी कल मॉर्निंग में, मैं मीरा रोड से निकला तो लगा नहीं था कि इस तरीके से बारिश होगी और पूरी रात कल ऑफिस में पूरी रात निकालनी पड़ी।
कल की बारिश ने मुंबई निवासियों के मन में 26 जुलाई की यादें ताजा कर दी। शहर की नामी आरजे मलिष्का ने कहा,
सिस्टम को ही बोलेगा ना कि कुछ करें। मेरा मानना यही है कि चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो जो भी अथॉरिटी हो जिसको जिसको हम इस शहर को संभालने का जिम्मा दिया गया हो, वो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी से काम करे। जहां पर वो कहें कि इस शहर को वर्ल्ड लेवल शहर बनाने के लिए, खुद की इज्जत बचाने के लिए हमने उनको वोट किया है। लोगों को बस चाहिए कि वो अच्छे रोड मिले उनको ताकि वो सेफ रहे। लोग अभी भी मैं रात की कुछ 10:30-11 की बात कर रही थी, लोग तभी भी ट्वीट किए जा रहे थे कि वो किस तरह से फंसे हुए हैं, बच्चों का स्कूल बस अब तक घर नहीं पहुंचा, ये कोई बात हो गई।
मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फंसे हुए लोगों की मदद की। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा,
कोशिश कर रहे हैं SMS पे, व्हाट्सएप पे, हमारी हेल्पलाइंस पे लोगों के ओर से मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है।
आज भी 3.5 फीट ऊंचे हाई टाइड का अनुमान लगाया जा रहा है, लिहाजा स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले करीब 2 दिन तक ऐसी बारिश जारी रह सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है।
निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत आवश्यक काम हो तभी लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले।
हाई टाइड को देखते हुए समुद्र से सटे इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई है। सर्च ऑपरेशन और बचाव दल के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। सुप्रिया सोगले, TVC, मुंबई।
मुसीबत अभी टली नहीं है। आज सुबह मुंबई में हाई टाइड यानी ज्वार की चेतावनी जताई गई है। BBC संवाददाता हरिता कांडपाल ने महाराष्ट्र में मौसम विभाग की वैज्ञानिक शुभांगी भूटे से बात की और पूछा कि क्या वजह है मुंबई पर मुश्किल बरसने की।
इसका वजह है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो MP के ऊपर है और वो गुजरात की तरफ मूव कर रहा है। इसके चलते जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स है वो तेज हो गई है, जिसकी वजह से जो कन्वेक्टिव कोन ऑफ कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से मुंबई में बहुत बारिश हो रही है। मुंबई के सबर्ब्स में 18 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है और काफी जगह पे वाटर लॉगिंग भी हुआ है।
और बुधवार को भी क्या इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना आप देखती हैं?
जी हाँ, फोरकास्ट जो पूर्वानुमान किया हुआ है उसमें एसर्टेड हैवी, मतलब काफी जगह पे भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है।
मुंबई और इसके अलावा और कौन से वैसे इलाके हैं जहां पर इसका असर अब आगे और देखा जाएगा?
मुंबई के अलावा नॉर्थ कोंकण, मतलब थाने, रायगढ़ और पालघर डिस्ट्रिक्ट्स में, महाराष्ट्र में ये वाले इलाके हैं जिसमें नॉर्थ कोंकण कहा जाएगा। साउथ गुजरात में भी इससे भी ज्यादा बारिश होगी और साथ में सौराष्ट्र कच्छ में भी हम लोग देख पाएंगे कि अगले 3 से 4 दिनों तक काफी भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है।
इसके अलावा जो हाई टाइड है उसे लेकर भी क्या मुंबई के हालात खराब होने की संभावना जो जैसे कि बताई जा रही है, आप फिलहाल क्या देख रही
हैं? बीएमसी जो हाई टाइड का शेड्यूल देती है उसके हिसाब से 4:30 को हाई टाइड था अभी, उसकी वजह से मुंबई में और काफी इलाकों में वाटर लॉगिंग हुआ है। तो अगर ये बारिश का थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाता है तो शायद थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है।
आने वाले कितने दिनों में हम इन सारे इलाकों में राहत की उम्मीद कर सकते हैं?
जनरली जब सिस्टम है अभी जो लो प्रेशर या कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है एमपी की तरफ, वो थोड़ा सा फास्ट मूविंग है, उसे चलते 36 आवर्स तक, मतलब 36 घंटों तक ये देखा जा सकता है। कल से शाम तक शायद कम हो जाएगा।
आज शाम तक शायद बारिश कम हो जाएगी, बता रही थी मौसम वैज्ञानिक शुभांगी भूटे। ताज़ा हालात की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई, बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोन्नूर के पास। मयूरेश, मुंबई में आज की सुबह कैसी है, क्या पानी कुछ कम हुआ है?
आज की सुबह वैसे माने तो बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि अगर पूरी रात की बात करें और अब की बात करें तो बारिश रुकी हुई है। रात के कुछ घंटों में बारिश फिर से शुरू हुई थी, लेकिन अब भी फिलहाल मुंबई पे बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश पूरी तरह थम चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो कायम है और अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। इसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बताया है कि आह्वान किया है कि आप घर से बाहर ना निकले, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, स्कूल्स कॉलेज आज बंद ही रहेंगे। मुंबई की अगर अभी ताजा हालात देखें और मुंबई की लाइफलाइन रेलवे जो कल पूरी तरह ठप हो चुकी थी उसका देखें तो वेस्टर्न लाइन जो है वहां पे कुछ जगह पे गाड़ियां शुरू हुई हैं लेकिन लेट से चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो कल ठप हो चुकी थी, आज देर पहले आज शुरू की गई थी कुछ गाड़ियां लेकिन फिर से अब बंद की गई है, वहां पे कुछ नहीं चल रहा है। और हार्बर रेलवे जो तीसरी लाइन है वो पूरी तरह ठप हो चुकी है, एक भी गाड़ी अभी यहां पे नहीं चल रही है।
मयूरेश, अगर संक्षेप में बता सकें कि हालात सामान्य होने में अभी कितना वक्त लग सकता है?
अगर बारिश का ये जो अब जोर कम हो चुका है वैसा ही रहा तो हालात आज दिन भर में सामान्य होते दिखाई देंगे, क्योंकि जहां पे भी वाटर लॉगिंग हुआ है, पानी आ चुका है, वो धीरे धीरे जाना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग कल अपने ऑफिस में या फिर मंडल्स में स्ट्रैंडेड थे, वहीं पे रात गुजारी है उन्होंने, वो आज अपने घर वापस जाएंगे। तो बारिश का जोर ऐसा ही अगर कम रहा तो आज पूरे दिन में हालात सामान्य स्थिति पे आने दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल किसी को भी बताया गया है कि आप स्कूल्स कॉलेजेस में मत जाएं, ऑफिसेस में मत जाएं, क्योंकि भारी बारिश का जो अनुमान है मौसम विभाग का वो आज अब भी कायम है, लेकिन अब फिलहाल मुंबई में बारिश रात से नहीं हो रही।
शुक्रिया मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी संवाददाता मुंबई से। 2005 में 26 जुलाई की यादें मुंबईकरों के जहन में ताज़ा हो गई हैं। उस दिन शहर में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। जलभराव की समस्या मुंबई में अक्सर देखने में आती है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय से बातचीत में आरोप लगाया कि यह सत्ता में बैठे लोगों की नाकामी है।
12 साल पहले जो आपत्ति आई थी उस आपत्ति से महानगर पालिका ने कुछ भी नहीं सीखा ऐसा दिखता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास बारिश के पानी के निकालने के लिए उसकी जो कैपेसिटी है वो 25 mm है, उसको 50 mm करना चाहिए, मतलब 50 mm बारिश अगर 1 घंटे में होती है तो इमीडिएट क्लियर हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है कि 1600 करोड़ रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आने के बाद भी आज वो प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ 40% पूरा हुआ है। तो 12 साल बाद भी आप इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फंड होने के बावजूद भी अगर काम नहीं करते हैं तो ये निश्चित तौर पर हमारी फेलियर है, सत्ता में बैठे लोगों की फेलियर है, वरना इस बारिश का पानी निकलना बहुत मुश्किल काम नहीं था। 6-6 पंपिंग स्टेशन है मुंबई में, वो बेसिकली बारिश के पानी को फ्लश आउट करने के लिए, वो पंपिंग स्टेशन भी आज चौकअप हो गए हैं। मतलब पंपिंग स्टेशन पे 1200 करोड़ रुपए खर्च किया हमने 2-3 साल में, उसके बावजूद पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे, तो किसका फेलियर है? मुंबई महानगर पालिका, जिसकी जवाबदारी है ड्रेनेज सिस्टम और रास्ता बनाना, उसके पास 62,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है, 32,000 करोड़ रुपए का एनुअल बजट है, और बावजूद इसके अगर हम मुंबई को डेवलप नहीं कर पा रहे, मुंबई को जीने लायक नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें मुंबई कर का दोष नहीं है, उनके ऊपर राज करने वाले लोगों का दोष है।
ये थे कांग्रेस नेता संजय निरुपम। मुंबई में शिवसेना का बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी पर दबदबा है। हमने बीएमसी के अधिकारियों और शिवसेना से भी कई बार संपर्क की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अब वक्त है दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा का। मेरे साथ मानसी दास स्टूडियो में हैं। मानसी, क्या कुछ है आज के अखबारों में?
सभी अखबारों के पहले पन्ने पर मुंबई में बाढ़ की स्थिति की तस्वीर है। घुटने तक पानी में भरी सड़क में बारिश के बीच एक बूढ़ा इंसान अपनी बंद पड़ी ऑटो को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर। पानी से भरी सड़कों में भारी जाम, कमर तक पानी में स्कूल जाता एक बच्चा और पानी से भरे रेलवे के ट्रैक पर 2 रेलगाड़ियां, ऐसी कुछ तस्वीरें छापी हैं दी स्टेट्समैन ने अपने पहले पन्ने पर। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर कमर तक पानी में भरे सड़क की तस्वीर छापी है, जिसमें कारों के और बसों की छतों के ऊपर लोग खड़े दिख रहे हैं। अब और खबरें जो छपी है अखबारों में, वो श्रोताओं को बता दूं। हाल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से हुई बच्चों की मौतों के कारण चर्चा में आए गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में बीते 48 घंटों में 36 बच्चों की मौत हो गई है, ये खबर जनसत्ता ने छापी है। अखबार का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पी के शुक्ल ने इन मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण 27 और 28 अगस्त को केवल 7 बच्चों की मौत हुई है, जबकि बाकी बच्चों की मौत दूसरी बीमारियों के कारण हुई है। गुरमीत राम रहीम का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस खबर पर स्टेट्समैन ने अपने पहले पन्ने पर एक लेख छापा है और लिखा है, सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है कि गुरमीत राम रहीम की मां और पत्नी चाहती हैं कि उनका बेटा जसमीत अगले डेरा प्रमुख बने। इस पद के लिए राम रहीम की गोद ली गई बेटी और डेरा की मौजूदा चेयरपर्सन विपस्सना इंसा का नाम भी सुनने को मिल रहा है। साथ ही राम रहीम के करीब रहने वाली उनकी गोद ली बेटी हनीप्रीत इंसा का नाम भी लिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से की है।
शुक्रिया मानसी दास अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 73 दिन बाद डोकलाम में टूटा है भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध और इसका भूटान ने स्वागत किया है। ये विवाद शुरुआत में भूटान और चीन के बीच ही था। डोकलाम को भूटान अपना हिस्सा मानता है, इसलिए उसे यहाँ चीन के सड़क बनाने पर आपत्ति थी। भारत ने इस सड़क निर्माण को रोकने के लिए अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन 3 से 5 सितंबर के बीच चीन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन ने समझौता कर लिया है। बीबीसी संवाददाता हरिता कांडपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या इससे भूटान भी राहत की सांस ले सकता है।
देखिए, भूटान तो किसी हद तक बहुत खुश होगा, क्योंकि उसके लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। दो शक्तियों के बीच में छोटा सा देश पिस रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं पर इस एपिसोड के बाद एक नर्वसनेस बनी रहेगी कि ये कभी भी हो सकता है फिर से,
और उस पर भूटान की चिंताएं तो शायद बनी ही रहेंगी अगर चीन सड़क निर्माण जारी रखता है।
हाँ, देखिए, जो परिस्थिति अभी तक बन रही है वो तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो समझौता हुआ है उसके तहत चीन सड़क निर्माण नहीं करेगा, कम से कम अभी जो हालात बन रहे हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि कल या परसों या आगे आने वाले समय में चीन सड़क का निर्माण वापस शुरू नहीं करेगा, तो इसलिए जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो तो बनी है अपनी जगह। और जहां तक भूटान की स्थिति है, वो तो यही चाहेगा, जैसा मैंने पहले कहा, कि इस बॉर्डर समस्या का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले, क्योंकि नहीं तो ये चीन ने जिस तरह से एक जो तीन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट था उसको रिवाइज करने की कोशिश करी यूनिलैटरली, वो तो कल भी हो सकता है, वो तो आगे आने वाले समय में भी हो सकता है।
भूटान और चीन के रिश्ते आगे किस तरह के रहेंगे?
भारत के भूटान के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध है, तो मुझे लगता है कहीं पर भूटान की जो सरकार है वो आश्वस्त होगी कि अगर समय आएगा तो भारत भूटान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जहां तक चीन के साथ के संबंध है, वो तो चीन के साथ भूटान संबंध बनाना चाह रहा था, पर वो आर्थिक संबंध बनाना चाह रहा है कुछ समय, तो वहां पर चीन ने भी काफी योजनाएं बनाई हैं, चीन काफी बातचीत करने के लिए तत्पर है, और मुझे लगता है कहीं पर जो ये डोकलाम का एपिसोड हुआ वहां पर चीन ये एक तरह से भारत को जता भी रहा था कि जो भारत के बहुत करीबी मित्र देश हैं वहां भी चीन का प्रभुत्व आगे आने वाले समय में भारत देखेगा। तो मुझे लगता है जहां तक भूटान का सवाल है, भूटान को तो ये बैलेंस भारत और चीन के बीच में बनाकर ही चलना पड़ेगा आगे।
जी, और डोकलाम की बात करें तो भूटान और चीन के बीच इस मसले को सुलझाने के बीच किस तरह की अड़चने हैं आप देखते हैं?
ये बेसिकली दो तरह के इंटरप्रिटेशन है। चीन जो है वो पुराने जो लीगल ट्रीटीज हैं उनको मानने से इनकार करता है, क्योंकि चीन ये कहता है कि वो समय साइन की गई थी जिस समय चीन एक सॉवरन नेशन नहीं था, वो अंडर ड्यूरेस साइन करी गई थी। भारत और नहीं भूटान और भारत दोनों ही ये कहते हैं कि वो जो बाउंड्री की समस्या है उसमें कहीं पर किसी को कुछ ना कुछ देना और कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा। तो भूटान का भी, भूटान की समस्या जो है वो भारत की बाउंड्री डिस्प्यूट से ही लिंक्ड है। जब भारत और चीन ये डिसाइड करेंगे कि हम ये विवाद बाउंड्री डिस्प्यूट का कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकल रहा है, तब भूटान का भी रेजोल्यूशन निकलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत। बिहार में आई बाढ़ से प्रदेश के 19 जिलों के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 514 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी नीरज सहाय ने बिहार की बाढ़ पर प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री दिनेश चंद्र यादव से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया है, क्या वह हालात से निपटने के लिए काफी है?
ना, सक्षम तो नहीं है। आपको बताया ना कि हम लोग जो मेमोरेंडम उनको दिए 10,787 करोड़ 32 लाख रुपये का आंकड़ा हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने रखे, तो उन्होंने तो तत्क्षण दिया 500 करोड़ रुपया। कोई भी सरकार हो, पैसा जब देती है तो उसका भी तो प्रक्रिया है, नियम है, तो पैसा तो आना ही आना है। आपके है UPA सरकार में, वो हम तो उस समय में घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री भी आए थे, लेकिन मिला बिहार को कुछ नहीं, लेकिन इस बार उम्मीद है।
अच्छा, क्या आप लोगों ने ये भी मांग रखी प्रधानमंत्री के सामने कि ये जो इस वर्ष बाढ़ आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए?
देखिए, राष्ट्रीय आपदा कोई शब्द नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपदा हो। रिलीफ दे देना राज्य सरकार के माध्यम से ही दिया जाता, तो जो राशि केंद्र देगी तो उसी में उसका उपयोग होगा। और मुख्यमंत्री जी तो पहले भी किए, उस बार भी किए, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके जो आप कहते हैं 1,000 करोड़, तो बिहार सरकार ऋण लिया उस कुशहात राशि में, उसी 1,000 से जो पुल टूट गए थे, जो सड़क ध्वस्त हो गया था, नहर टूट गया, तो राज्य सरकार अपने स्तर से कराई। सपोर्ट नहीं मिला उस समय के जो प्रधानमंत्री थे UPA के, मनमोहन सिंह जी।
एक ये बात वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे थे कि अप्रैल 2017 में ही एक लेटर इशू किया गया था जिसमें कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए वो लेटर दिया गया था, लेकिन उस संबंध में कुछ नहीं किया गया। सरकार या जिला प्रशासन इस दिशा में बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड थी।
ना, बाढ़ के पूर्व पूरी तैयारी की जाती है। तैयारी यह की जाती है कि लोग यदि फंसेगा तो उसको निकालने का हम क्या इंतजाम करेंगे, उसके लिए तो NDRF की टीम और SDRF की टीम सभी जिला में प्रतिनियुक्त था, और चूंकि लोड ज़्यादा पड़ गया तो फिर केंद्र से उस तरह के लोग आए और सेना को भी बुलाया गया और सभी कलेक्टर अलर्ट थे। लेकिन इस तरह की कहे ना कि अप्रत्याशित बाढ़ आई, इसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, सोचते ही थे कि बाढ़ आएगा, जैसे हम लोग का इलाका है कोसी का इलाका, यदि वही व्यक्ति हो राज का शासक तो क्या कर लेता। जैसे ट्रेडिशनल बाढ़ आता था उस तरह से आता,
तो फिर तैयारी तो उसके लिए सफिशियंट थी और वो अप्रत्याशित भी बाढ़ आया। तो जिस दिन बाढ़ आया उसके दूसरे दिन से प्रशासन एक्टिव हो गया और जगह जगह जितने इतनी पानी आ गई कि किसी के बस में नहीं था।
इसके बचाव और राहत कार्य को 10 नंबर में कितने अंक दिए?
हमको लगता है कि जो इस सरकार वर्तमान नीतीश कुमार जी की सरकार है तो उसमें तो 10 में से तो 9 जरूर दिया जा।
अपनी सरकार के राहत बचाव कार्यों को 10 में से 9 नंबर दे रहे थे बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव। क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ 12वीं पास लोग प्रदेश भर के कलेक्टरों और कमिश्नरों समेत तमाम आईएएस अधिकारियों को आदेश जारी करें और वे उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हों? कम से कम छत्तीसगढ़ में तो यही हो रहा है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय के संयुक्त सचिव का नाम रजीना टोप्पो है और उनकी शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी 12वीं है। वे राज्य की कुछ विभागों में सचिव के पद पर भी कार्यरत हैं, लेकिन रजीना अकेली ऐसी नहीं है। राज्य में मंत्रालयीन सेवा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव के कुल जमा 50 पदों पर जो लोग कार्यरत हैं उनमें 31 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, यानी मंत्रालय के 62% शीर्ष अधिकारी 12वीं पास हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं जो राज्य के आईएएस और आईपीएस को भी निर्देश जारी करते हैं। संयुक्त सचिव के एकमात्र पद पर कार्यरत रजीना टोपो के अलावा 7 उप सचिवों में से 6 ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसी तरह 42 में से 24 अवर सचिवों का भी यही हाल है। असल में सारा मामला पदोन्नति का है। अब अवर सचिव जेवियर करकट्टा को ही लें। 56 साल के जेवियर ने 1981 में लोअर डिविजनल क्लर्क के तौर पर नौकरी की शुरुआत की और आज वे कृषि और सहकारिता विभाग के अवर सचिव हैं। लेकिन करकट्टा का मानना है कि शैक्षणिक योग्यता अपनी जगह है और अनुभव अपनी जगह।
भर्ती नियम में जो किसी पोस्ट के लिए साधारण तो ठीक है, भले वो हायर सेकेंडरी किया हो या मास्टर डिग्री हो। एजुकेशन भी ठीक है, सीनियरिटी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका अनुभव है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल के लिए यह खबर ही चौंकाने वाली थी।
बोलते नहीं बन रहा है मुझे तो, क्या बोले इसमें, ये अफसर कैसे बन जाएंगे भाई, ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये तो चौंकाने वाली खबर बता रहे हैं आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बाबू अगर हो समझ आता है, कैसे हो सकता है जी 65% अधिकारी केवल मेट्रिकुलेट है, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं।
लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने वाले सामान्य प्रशासन विभाग के संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी मानते हैं कि इन 12वीं पास अधिकारियों के कारण काम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
ऐसा तो नहीं लगा कि इनके एजुकेशन के वजह से कोई काम में कोई फर्क पड़ा हो, ऐसा तो किसी को भी नहीं लगा। एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है, अनुभव भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर लोगों का काम करने का कैपेसिटी होता है, काम करने का ललक होता है, इच्छा शक्ति होता है, उस हिसाब से कम एजुकेशन वाला व्यक्ति भी अच्छा कर सकता है।
12वीं तक की पढ़ाई के बाद प्रथम और द्वितीय श्रेणी के गेजेटेड यानी राजपत्रित अधिकारी बनने वाले लोगों को लेकर सरकारी तर्क अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा, अनुभव और पदोन्नति से परे उच्च शिक्षा का कोई तो मतलब होता ही होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
अब आपको खेल की खबर बता दें। अमेरिका में चल रहे US ओपन में 15 महीने के डोपिंग सस्पेंशन के बाद लौटी मारिया शारापोवा ने विश्व नंबर 2 सिमोना इलेप को 6-4, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। 30 वर्षीय मारा शारापोवा का कहना है कि यह जीत उनके लिए खास है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो US ओपन में हिस्सा ले रही हैं या नहीं। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। मुंबई में भारी बारिश और पानी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के कारण मुंबई की बस व्यवस्था और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। अमेरिका में तूफान हार्वे के कारण आई बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास पहुंचे। उत्तर कोरिया की ओर से जापानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से होकर मिसाइल छोड़ने के ताज़ा मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चल रही है। लेबनन में जानवरों को बचाने की दिशा में अपना पहला कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत वन्य जंतुओं और लुप्तप्राय जानवरों को रखना गैर कानूनी बताया गया है। चीन का कहना है कि वह इक्वाडोर में हिरासत में लिए गए अपने जहाज के मामले की जांच कर रहा है। इस जहाज पर गैलापागोस के संरक्षित समंदर में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप लगाए गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुँचाया सिंधु वासिनी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।